ओल ओल इसकी वर्तनी क्या है? वेस्टर्न यूनियन के पीतल के काउंटर पर बैठी रूखी युवती ने पूछा, जिसे आर्चर ने पत्नी का तार थमाया था। ओलेंस का, ओलेंस का। आर्चर ने कागज वापस लेकर मी की जल्दबाजी भरी लिखावट के ऊपर वो विदेशी नाम साफ साफ लिखते हुए धीरे धीरे दोहराया। न्यूयॉर्क के तार घर में ऐसा नाम कम दिखता है, कम से कम इस मोहल्ले में। एक अप्रत्याशित आवाज आई। आर्चर ने मुड़कर देखा, लॉरेंस लेफर्ट्स कोहनी के पास खड़ा था, मूछें ऐंठता, तार न देखने का नाटक करता। हेलो न्यूलैंड, पता था तुम यही मिलोगे। अभी अभी सुना कि मिंगट नानी को आघात हुआ है। घर की ओर जा रहा था कि तुम्हें इधर मुड़ते देखा और पीछे चला आया। वहीं से आ रहे हो? आर्चर ने सिर हिलाया और तार जाली के नीचे सरका दिया। हालत खराब लगती है, लेफर्ट्स बोलता गया। परिवार को तार भेज रहे हो, जाहिर है। काउंटेस ओलेंस्का तक शामिल है तो मामला संगीन ही होगा। आर्चर ने होंठ भींच लिए। उस लंबे सुंदर अहंकारी चेहरे पर घूंसा जड़ देने की जंगली इच्छा उसके भीतर उमड़ी। ऐसा क्यों सोचते हो? आर्चर ने पूछा। बहस टालने के लिए मशहूर लेफर्ट्स ने कटाक्ष भरे भाव से भौहें चढ़ाई। चेतावनी की काउंटर के पार बैठी युवती देख रही है। सार्वजनिक जगह पर गुस्सा दिखाने से बुरा कोई तौर तरीका नहीं, वही भाव ये याद दिला रहा था। आर्चर औपचारिकताओं का पाबंद था, पर इस पल वो उनसे पूरी तरह उदासीन था। हालांकि लेफर्ट्स को मारने की इच्छा क्षण भर की थी, इस घड़ी किसी भी बहाने एलन ओलेंस्का का नाम लेफर्ट्स के साथ उछालना सोच से भी बाहर था। उसने तार का शुल्क चुकाया और दोनों युवक साथ साथ सड़क पर निकल आए। आर्चर ने संयत होकर कहा, मिंगट नानी अब काफी बेहतर है, डॉक्टर ने कहा है चिंता की कोई बात नहीं। लेफर्ट्स ने राहत के उद्गार बरसाए, फिर पूछा कि क्या उसने ब्यूफर्ट के बारे में घूम रही नई जहरीली अफवाहें सुनी हैं? उसी दोपहर ब्यूफर्ट बैंक के दिवालियापन की खबर सारे अखबारों में छप गई। इस खबर ने मिंगट नानी के आघात को ढंक लिया। दोनों का सूक्ष्म संबंध जानने वाले गिने चुने ही सोच सके कि उनकी बीमारी सिर्फ बुढ़ापे का नतीजा नहीं होगी। पूरा न्यूयॉर्क ब्यूफर्ट की बदनामी से म्लान हो गया। श्री लेटर ब्लेयर के अनुसार इतना संगीन मामला उनकी स्मृति में नहीं था। पतन अटल होने के बाद भी बैंक पूरा एक दिन पैसा लेता रहा और ग्राहक ज्यादातर प्रतिष्ठित घरानों से थे, सो ब्यूफर्ट की दो मुही चाल और भी नीच लगी। श्रीमती ब्यूफर्ट ने इस दुर्भाग्य शब्द उन्हीं का था को दोस्ती की परीक्षा न कहा होता तो उन पर तरस उनके पति पर गुस्से को कुछ नरम कर देता। पर आधी रात श्रीमती मैनसन मिंगट के घर जाने का उनका मकसद खुलने के बाद माना गया कि उनकी बेशर्मी पति से भी बढ़कर है। ऊपर से उनके पास विदेशी होने का बहाना भी नहीं था और उनके निंदकों को ये बहाना सुनने का संतोष भी नसीब न हुआ। हाँ, ब्यूफर्ट का विदेशी होना, जिनके शेयर दांव पर नहीं थे, उनके लिए कुछ हद तक तसल्ली की बात थी। पर जब दक्षिणी कैरोलिना वाले डलास ने पूरे मामले को हल्के में लेते हुए बेधड़क कहा कि वो फिर खड़ा हो जाएगा, तो ये तर्क भी दम तोड़ गया। अंततः इस घटना को विवाह बंधन की अटूटता का भयावह उदाहरण मानकर स्वीकारना ही पड़ा। समाज को अब ब्यूफर्ट दंपति के बिना जीने का रास्ता ढूंढना था, बस इतना ही। सिवा इस विपदा के अभागे शिकारों के, मेडोरा मैनसन, बेचारी लैनिंग बहने और अच्छे घरानों की कुछ और भटकी हुई महिलाएं, जिन्होंने हेनरी वान डेर लुईडेन की सलाह मानी होती तो ये दिन न देखना पड़ता। ब्यूफर्ट दंपति के लिए सबसे समझदारी की बात ये होगी, श्रीमती आर्चर ने निदान और नुस्खा एक साथ लिखने वाले चिकित्सक के अंदाज में कहा, कि रेजीना के उत्तरी कैरोलिना वाले छोटे घर में जाकर रहे। ब्यूफर्ट हमेशा रेस के अस्तबल रखता आया है, अब चाल घोड़े पाले तो बेहतर। मेरे ख्याल से उसमें अच्छे घोड़ों के सौदागर के सारे गुण हैं। सबने हामी भरी, पर किसी ने ये पूछने की जहमत न उठाई कि ब्यूफर्ट दंपति असल में क्या करने वाले हैं। अगले दिन श्रीमती मैनसन मिंगट की हालत काफी सुधर गई। आवाज लौट आई और उन्होंने हुक्म दिया कि अब उनके सामने ब्यूफर्ट दंपति का जिक्र न हो, और डॉक्टर बैनकॉम के आने पर पूछा कि परिवार उनकी सेहत को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा रहा है। मेरी उम्र में रात को चिकन सलाद खाओ तो और क्या उम्मीद थी। डॉक्टर ने झट उनका आहार सुधार दिया और आघात महज बदहजमी में बदल गया। पर दृढ़ लहजे के बावजूद कैथरीन नानी जीवन के प्रति अपना पुराना रवैया पूरी तरह नहीं लौटा पाई। बुढ़ापे का बढ़ता एकांत, पड़ोसियों के प्रति जिज्ञासा भले कम न करे, दूसरों के दुख के लिए उनकी पहले से ही अल्प करुणा को और कुंद कर चुका था और ब्यूफर्ड दंपति की तबाही उनके मन से आसानी से मिट गई। पर पहली बार वे अपने लक्षणों में डूब गईं और अब तक उपेक्षित रहे कुछ परिजनों में भावुक दिलचस्पी लेने लगी। खासकर श्री वेलैंड को उनका ध्यान पाने का सौभाग्य मिला। दामादों में वही सबसे अनदेखा रहा था। पत्नी जब जब उन्हें दृढ़ चरित्र और असाधारण बुद्धि का धनी बताती, चाहते तो कर दिखाते, नानी उपहास भरी हंसी से उड़ा देती। पर अब उनकी रुग्णता दिलचस्पी की चीज बन गई। मिंगट नानी ने साम्राज्य की तरह फरमान जारी किया कि बुखार उतरते ही वे आकर आहार का मिलान करें, क्योंकि अब कैथरीन नानी सबसे पहले मानने वालों में थी कि शरीर के तापमान के मामले में सावधानी कभी ज्यादा नहीं होती। ओलेंस्का को भेजे तार के 24 घंटे के भीतर खबर आई कि वो अगले दिन शाम वॉशिंगटन से पहुंचेगी। उस समय वेलैंड के घर दोपहर का खाना खा रहे आर्चर दंपति के सामने सवाल उठा कि जर्जी सिटी स्टेशन कौन जाएगा, और सीमा चौकी जैसे घिरे वेलैंड घराने की भौतिक दुश्वारियों ने बहस गर्मा दी। श्रीमती वेलैंड नहीं जा सकती थी, उन्हें उसी दोपहर पति के साथ कैथरीन नानी के यहाँ जाना था। ब्रूम गाड़ी भी नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि आघात के बाद पहली बार सास से मिलकर श्री वेलैंड विचलित हो जाए तो उन्हें फौरन घर पहुंचाना पड़ सकता था। वेलैंड के बेटे शहर में होंगे। श्री लवेल मिंगट शिकार से लौटने की जल्दी में थे और मिंगट गाड़ी उन्हें लेने जाएगी, और ढलती सर्दियों की शाम मे को अकेले भले अपनी ही गाड़ी में फेरी से जर्जी सिटी भेजना सोचा भी नहीं जा सकता था। पर परिवार से कोई एलन को स्टेशन पर न मिले तो ये रूखापन लगेगा कैथरीन नानी की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध। परिवार को ऐसे धर्म संकट में डालना एलन जैसों का ही काम है, श्रीमती वेलैंड की थकी आवाज ने जताया। हमेशा यही होता है, एक बात खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। उन्होंने नियति के विरुद्ध अपने दुर्लभ विद्रोहों में से एक में शिकवा किया। माँ की हालत डॉक्टर बैनकॉम के मानने से ज्यादा खराब है, ये सोचने की मेरे पास एक ही वजह है। मिलना इतना असुविधाजनक होते हुए भी एलन को फौरन बुलाने की ये रुग्ण ललक, ये शब्द जल्दबाजी में बिना तौले निकल गए थे और श्री वेलैंड ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ऑगस्टा, उन्होंने पीले पड़ते हुए कांटा रखकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और वजह है ये मानने की कि बैनकॉम अब पहले जैसे भरोसे के लायक नहीं? क्या तुम्हें लगा कि वे मेरी बीमारी या तुम्हारी माँ की बीमारी को पहले से कम लगन से देख रहे हैं? अब पीला पड़ने की बारी श्रीमती वेलैंड की थी। चूक के अनंत परिणाम आंखों के आगे घूम गए, पर वे हंसी जुटा लाई, सीप दोबारा परोसी और पुराना कवच ओढ़ते हुए बोली, ये आप कैसे सोच सकते हैं जी? मेरा मतलब बस ये था कि माँ ने जब इतनी दृढ़ता से कहा था कि एलन का धर्म पति के पास लौटना है, तो अचानक उसे देखने की ये जिद अजीब है, जबकि बुलाने को 6 और नाती पोते हैं। पर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि माँ अपनी अद्भुत जीवनी शक्ति के बावजूद अब बहुत वृद्ध है। श्री वेलैंड का माथा अब भी बादलों से घिरा था। साफ था कि उनकी विचलित कल्पना पत्नी के आखिरी वाक्य से चिपक गई थी। हाँ, तुम्हारी माँ बहुत वृद्ध है, और हो सकता है बैनकॉम बहुत वृद्ध मरीजों में उतने सफल न हो जैसा तुम कहती हो। हमेशा एक बात खत्म होती है तो दूसरी आती है। 10-15 साल में मुझे नया डॉक्टर ढूंढने का सुखद दायित्व निभाना होगा। ऐसे बदलाव सचमुच जरूरी होने से पहले कर लेना ही अच्छा। और ये स्पार्टा सा संकल्प लेकर श्री वेलैंड ने मजबूती से काटा थाम लिया। पर जो भी सोचूं, श्रीमती वेलैंड ने भोजन की मेज से उठकर घर के भीतर बैंगनी साटन और मेलाकाइट से सजे बैठक खाने की ओर ले जाते हुए फिर कहा, समझ नहीं आता कल शाम एलन को लाया कैसे जाएगा, और मुझे चैन तभी मिलता है जब चीजें कम से कम 24 घंटे पहले तय हो जाए। आर्चर गोमेद के पदकों से जड़े अटकोने आबनूसी चौकटे में मढ़ी उस छोटी तस्वीर से जिसमें दो कार्डिनल रंग रलिया मनाते मदिरा पी रहे थे, मुग्ध निगाहें हटाकर मुड़ा, मैं ले आऊं, मैं गाड़ी फेरी तक भिजवा दे तो दफ्तर से समय पर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका दिल उत्तेजना से धड़क रहा था। श्रीमती वेलैंड ने राहत की सांस छोड़ी और खिड़की के पास खड़ी मे ने मुड़कर उस पर अनुमोदन की रोशनी डाली, देखिए ना माँ, इस तरह सब कुछ 24 घंटे पहले तय हो गया। मे ने माँ के चिंतित माथे पर झुककर चुंबन दिया। मे की ब्रूम गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी, उसे आर्चर को यूनियन स्क्वायर तक छोड़ना था, जहां से वो ब्रॉडवे की ट्रैम लेकर दफ्तर जा सकता था। गाड़ी के कोने में बैठते हुए मे ने कहा, माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए वहां नहीं कहा, पर कल तो आपको वॉशिंगटन जाना है, फिर एलन को कैसे लाएंगे? अरे मैं नहीं जा रहा, आर्चर ने जवाब दिया। नहीं जा रहे? क्यों, क्या हुआ? उसकी आवाज घंटी सी साफ थी, पत्नी सुलभ चिंता से भरी। मुकदमा टल गया, स्थगित हो गया। स्थगित? कैसी अजीब बात। आज सुबह मैंने माँ के पास श्री लेटर ब्लेयर की चिट्ठी देखी, लिखा था कि वे कल उस बड़े पेटेंट मुकदमे के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं, जिसकी पैरवी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में करनी है। आपने भी तो पेटेंट मुकदमा ही कहा था ना? हाँ वही तो, पर पूरा दफ्तर तो नहीं जा सकता। लेटर ब्लेयर साहब ने आज सुबह खुद जाने का फैसला किया तो मुकदमा स्थगित नहीं हुआ। उसकी ये जिद उसकी आदत से इतनी अलग थी कि आर्चर का चेहरा तप गया, मानो शिष्टता की मर्यादा के इस अभूतपूर्व उल्लंघन पर वो उसकी जगह खुद लजा रहा हो। नहीं, मुकदमा स्थगित नहीं हुआ। स्थगित मेरा जाना हुआ है, उसने जवाब दिया, वॉशिंगटन की घोषणा के साथ दिए अपने सारे फालतू ब्योरों को कोसते हुए। और कहीं पढ़ा वाक्य याद आया, चतुर झूठा ब्योरे गिनाता है, सबसे चतुर कुछ नहीं गिनाता। मैं से झूठ बोलना उतना नहीं चुभा जितना ये देखना कि वो झूठ भाप कर भी अनजान बनी हुई है। मैं बाद में जाऊंगा, मेरा ना जाना तुम्हारे परिवार के लिए गनीमत ही रहा। देखो ना, वो व्यंग्य की ओट में कायरता से छिपते हुए बोला। बोलते बोलते उसे लगा कि वो उसे देख रही है और नजर चुराता न दिखे, इसलिए उसने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। पल भर दोनों एक दूसरे को ताकते रहे और शायद दोनों ने एक दूसरे के भीतर उससे ज्यादा झांक लिया जितना दोनों चाहते थे। हाँ, ये तो सचमुच बड़ा सुभीता हो गया, मैं ने खिले स्वर में हामी भरी। आप एलन को ला सकेंगे, देखा ना, माँ आपके प्रस्ताव से कितनी कृतज्ञ हुई। मैं भी खुशी से ही कर रहा हूँ। गाड़ी रुकी, वो कूद कर उतरा। उसने झुक कर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अच्छा जाइए। उसकी आंखें इतनी नीली थीं कि आर्चर बाद में सोचता रह गया, कहीं वे आंसुओं के पार तो नहीं चमक रही थी। वो मुड़ा और तेज कदमों से यूनियन स्क्वायर पार करने लगा। भीतर भजन सा दोहराता, जर्जी सिटी से नानी के घर तक पूरे दो घंटे, शायद ज्यादा।